एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
ये जिंदगी वीरान है, यीशु नाम के ये
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूं। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं और तेरी उपासना करते हैं। हम सबों को तो बुलाया है, हम सबों को तो आशीषित कर, विशेषकर आज का वचन से मेरे हरेक श्रोतागणों के संग हो, उन्हें तो आत्मिक आशीष दे तेरे वचन से, और मेरे संग हो पिता तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरा पवित्र आत्मा के सामर्थ से तेरा वचन को बतला सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनर ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का हमारा संवाद का शीर्षक है आत्मिक प्रोन्नति। जिस हृदय परिवर्तन के द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, बाइबल में उसे नया जन्म कहा गया है। फिर इसकी समानता किसान द्वारा बोए गए बीज के अंकुरित होने से की गई है। इसी प्रकार जो लोग मसीह बन जाते हैं, वे नए जन्मे बच्चों की तरह हैं, ताकि वे यीशु मसीह में पुरुष व स्त्री के पूरे कद तक बढ़ते जाएं। पहला पत्रस 2:2 और इफिसियों 4:15। खेत में बोए गए बीज की तरह उन्हें बढ़ना और फलवंत होना जरूरी है। यशायाह कहता है, वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यशायाह 61:3। आत्मिक जीवन की रहस्यमय सच्चाइयों को अच्छी तरह से समझने के लिए प्राकृतिक जीवन के उदाहरण दिए जाते हैं। मनुष्य की सारी बुद्धि और सभी योग्यताएं भी कुदरत के छोटे से छोटे पदार्थ में जान नहीं डाल सकती हैं। पेड़ पौधे हो या जीव जंतु, वे केवल उसी जीवन शक्ति के द्वारा जीवित रहते हैं जो परमेश्वर की ओर से दी गई है। जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, तब तक वह उस जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे देने के लिए मसीह इस दुनिया में आया। यूहन्ना 3:3। जैसा जीवन के बारे में सच है, वैसा ही विकास या बढ़ना भी है। परमेश्वर ही है जो कलियों को फूलों में और फूलों को फलों में बदलता है। उसी की शक्ति के कारण बीज विकसित होता है, पहले अंकुर, तब बालें और तब बालों में तैयार दाना। मरकुस 4:28। इसराइल के विषय में होशे नबी कहता है कि वह शोषण की नाई फूले फलेगा, वे अन्न की नाई बढ़ेंगे और दाखलता की नाई फूले फलेंगे। होशे 14:5-7। यीशु हमसे कहता है, शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। लूका 12:12। पौधे, फूल और पेड़ अपनी कोशिशों, चिंताओं और प्रयासों से नहीं, किंतु उस शक्ति के द्वारा बढ़ते हैं जो परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए प्रदान की है। एक बच्चा अपनी चिंता या शक्ति से अपने कद को बढ़ा नहीं सकता है, ना ही आप अपनी फिक्रों और कोशिशों के द्वारा आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। बच्चे और पौधे अपने वातावरण से जीवन देने वाली वस्तुओं जैसे हवा, धूप और भोजन लेकर जीवन प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से ये प्राकृतिक पदार्थ या वस्तुएं जीव जंतुओं और पौधों के लिए उपहार हैं, ठीक उसी प्रकार से मसीह भी उसके ऊपर विश्वास करने वालों के लिए एक उपहार हैं। वह उनके लिए सदा का उजियाला है तथा सूर्य और ढाल है। यशायाह 60:19। भजन संहिता 84:11। वह इसराइल के लिए ओस के समान होगा, वह घास की खूंटी पर बरसने वाला मेह के समान होगा। होशे 14:5। भजन संहिता 72:6। वह जीवन का जल है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। यह हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार का 6:33 में। अपने प्रिय पुत्र के अनुपम उपहार के द्वारा परमेश्वर ने सारे संसार को अपने अनुग्रह की वायु से इस प्रकार घेर लिया है जैसे हवा पूरे संसार को घेरे हुए है। जो कोई इस जीवनदायी वायु में सांस लेगा वह जीवित रहेगा और मसीह यीशु में पुरुष व स्त्री के पूरे कद तक बढ़ता जाएगा। जिस प्रकार सूरजमुखी का फूल सूरज की ओर घूमता रहता है ताकि तेज किरणें उसकी सुंदरता और सुडौलता में पूर्णता लाएं, इसी प्रकार हमें धार्मिकता के सूर्य मसीह की ओर मुंह कर लेना चाहिए कि हमारे ऊपर उसकी ज्योति चमकती रहे और हमारा चाल चलन मसीह की समानता में विकसित होता जाए। इसी बात की शिक्षा प्रभु यीशु इस प्रकार देता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 14:4-5। पवित्र जीवन बिताने के लिए आप मसीह के ऊपर ठीक उसी तरह से निर्भर हैं जिस तरह से बढ़ते और फल लाने के लिए पेड़ की डाली पेड़ की जड़ों पर निर्भर रहती है। मसीह से अलग होकर आप में कोई जीवन नहीं है। आप में इतनी सामर्थ कहाँ कि आप परीक्षाओं का सामना कर सकें और पवित्रता तथा अनुग्रह में बढ़ सकें। उसमें बने रहने से ही आप फलवंत हो सकते हैं। उससे जीवन प्राप्त करके आप ना तो सूखेंगे और ना ही निष्फल होंगे। आप उस पेड़ के समान होंगे जो नदी के किनारे लगाया गया है। अनेक लोगों की ऐसी धारणा है कि हमें भी कम का कुछ अंश स्वयं भी करना चाहिए। उन्होंने पाप की माफी के लिए तो मसीह पर भरोसा किया है, परंतु अब वे अपनी कोशिशों के द्वारा पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं। ऐसी सभी कोशिशें बेकार जाएंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। अनुग्रह में हमारी वृद्धि, हमारा आनंद, हमारी उपयोगिता, ये सब बातें मसीह के साथ जुड़े रहने पर निर्भर हैं। उसके साथ प्रतिदिन प्रतिपल संबंध बनाए रखने और उसी में बने रहने पर हम अनुग्रह में बढ़ते हैं। वह केवल हमारे विश्वास का कर्ता ही नहीं है, वह हमारे साथ है, हमारी जिंदगी की दौड़ के आरंभ और अंत में ही नहीं, परंतु हमारी राह के कदम कदम पर वह हमारे साथ है। दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। भजन संहिता 16:8 में हम यह पाते हैं। क्या आपका प्रश्न यह है कि मैं किस प्रकार मसीह में बना रहूं? उसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार आपने आरंभ में यीशु को अपनाया था, उसी प्रकार से उसमें बने रहिए। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। कुलुसियों 2:6। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इब्रानियों 10:38। आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। आप पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित हो गए हैं ताकि आप उसकी सेवा कर सके, उसकी आज्ञाओं का पालन कर सके। आपने मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लिया है। आप अपने पापों का प्रायश्चित स्वयं नहीं कर सकते हैं और अपने हृदय को भी स्वयं नहीं बदल सकते हैं, किंतु जब आपने अपने आप को परमेश्वर के समक्ष समर्पित कर दिया है तो उसने मसीह के नाम से आपके लिए यह सब कुछ पूरा किया है। विश्वास के कारण आप यीशु के हो गए हैं और विश्वास के बल पर ही आपको मसीह के हाथों में अपना सब कुछ, हृदय, सेवा, इच्छा, सभी कुछ सौंपना होगा कि आप उसके वचन के अनुसार चल सके, और आपको सब कुछ ग्रहण करना भी होगा, लेना होगा, सभी आशीषों की भरपूरी यीशु मसीह को कि वह आपके हृदय में निवास करे, आपको शक्ति सामर्थ्य दे, आपकी धार्मिकता बनकर निरंतर आपका सहायक बने और आज्ञा पालन करने की आपको शक्ति दे। प्रातःकाल अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया करें। अपने प्रतिदिन के जीवन का पहला कार्य इसी को बनाएं। आपकी प्रार्थना ऐसी हो, हे प्रभु, मुझे पूरी तरह से तू ग्रहण कर ले, तेरे चरणों में मैं अपनी सारी योजनाओं को समर्पित करता हूँ, अपनी सेवा में मुझे लगा ले, मेरे अंदर वास कर और मेरे प्रत्येक कार्य में तेरा हाथ हो। ऐसी प्रार्थना प्रतिदिन किया करे। प्रतिदिन प्रातःकाल अपने आप को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित कर दे, अपने सारे कार्यक्रम सारी योजनाएं उसे ही सौंप दे। उसमें आप चाहे सफल हो या असफल हो, यह सब उसी की इच्छा पर छोड़ दीजिए। इस प्रकार जब प्रतिदिन आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपते रहेंगे, तो आपका जीवन मसीह के जीवन की समानता में अधिक से अधिक ढलता जाएगा। मसीह में जीवन शांतिपूर्ण जीवन है, चाहे इसमें भावुकता ना हो, परंतु पूर्ण भरोसे वाली शांति अवश्य होनी चाहिए। आपकी आशा अपने आप में नहीं परंतु मसीह में है। आपकी दुर्बलता उसकी शक्ति के साथ जुड़ी हुई है, आपकी अज्ञानता उसकी बुद्धि के साथ जुड़ी हुई है, आपकी लाचारी उसकी महान शक्ति के साथ जुड़ चुकी है। इसलिए आपको स्वयं को नहीं निहारना है, आपको आपका मन उसके प्रेम सौंदर्य और उसके चरित्र की स्थिरता पर केंद्रित होनी चाहिए। आत्मा के चिंतन का विषय, आत्मत्याग की दशा में मसीह, दीनता की दशा में मसीह, शुद्धता एवं पवित्रता की दशा में मसीह, आपके सोच विचार का विषय मसीह होना चाहिए। उसको प्रेम करने के द्वारा, उसके पचीनों पर चलने के द्वारा, पूरी तरह से उसी पर निर्भर रहने के द्वारा ही आप उसकी समानता में बदलते जाएंगे। यीशु ने कहा, मुझ में बने रहो, इन शब्दों में शांति, स्थिरता और भरोसा पाया जाता है। वह फिर आमंत्रित करते हुए कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:25-28। भजनकार के वचनों में भी यही भाव छिपा हुआ है, जब वह कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आश्रय रख। भजन संहिता 37:7। और यशायाह यह दिलासा देते हुए कहता है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। यशायाह 30:17। इस प्रकार की शांति आलस निठेलेपन से नहीं मिलती है, क्योंकि उद्धारकर्ता के निमंत्रण में विश्राम की प्रतिज्ञा परिश्रम करने की उलाहट के साथ जुड़ी है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मत्ती 11:29। जो हृदय यीशु मसीह में विश्राम करता है, उतनी चाह और उत्साह के साथ उसके लिए परिश्रम भी करता है। जब मन स्वयं के ऊपर केंद्रित रहता है, तो वह मसीह से दूर रहता है, जो शक्ति व बल तथा जीवन का स्रोत है। अतः शैतान की निरंतर यही कोशिश रहती है कि ध्यान को उद्धारकर्ता से दूर हटाए रखे, और इस प्रकार से आत्मा और परमेश्वर के बीच बने हुए संपर्क को तोड़ दे। वह मन को संसार के भोग विलास, जीवन की चिंताओं तथा घबराहट और शोक आदि और दूसरों के अवगुणों अथवा अपने ही दोषों व गलतियों में से किसी एक पर या सभी पर केंद्रित रखता है। शैतान की चालों से धोखा ना खाएं। बहुत से लोग जो वास्तव में सावधान है और वे परमेश्वर के लिए जीने की चाहत रखते हैं, शैतान अक्सर उनके ध्यान को उनके दोषों और कमजोरियों के ऊपर केंद्रित रखकर उनको मसीह से दूर करके उनके ऊपर जय प्राप्त करना चाहता है। हमें स्वाद को चिंतन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए और अपने उद्धार के विषय में शंका भी नहीं करनी चाहिए कि हमारा उद्धार होगा अथवा नहीं। ये सब बातें इंसान को उसकी शक्ति के मूल स्रोत से अलग कर देती है। अपनी आत्मा की रक्षा के लिए अपने जीवन की सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और उस पर भरोसा रखिए। केवल यीशु के विषय में सोचे और यीशु के विषय में बातें करें। अपने स्वार्थ को उसी में विलीन कर दीजिए। सारे संदेह, सारे भ्रम दूर कर दीजिए। मन से सारे भय को निकाल दीजिए। प्रेरित पौलुस के साथ यह कहिए, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। गलतियों 2:20। परमेश्वर में विश्राम कीजिए। वही उस धरोहर की रक्षा करने के योग्य है जो आपने उसे सौंपी है। यदि आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे तो वह आपको उसके द्वारा जिसने आपसे इतना प्रेम किया है विजय से भी अधिक गौरवमयी बनाएगा। जब मसीह ने मनुष्य के स्वभाव को धारण किया तो उसने प्रेम की एक ऐसी डोरी से मानवता को अपने साथ बांध लिया है जो मनुष्य की अपनी इच्छा के अलावा किसी के भी तोड़ने से ना टूटे। हमें मसीह से अलग करने के लिए शैतान हमेशा हमारे सामने इस प्रकार के प्रलोभन पेश करता रहेगा कि हम इस बंधन को तोड़कर अपने आप को मसीह से अलग कर लें। यहीं पर हमें सतर्क रहने, जागते रहने, प्रयास करने और प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है ताकि शैतान हमें हमारे प्रभु और स्वामी से अलग करने में सफल ना हो सके, क्योंकि किसी दूसरे स्वामी का चुनाव करने के लिए हम सदैव स्वतंत्र हैं। हम अपनी निगाहें मसीह पर जमाए रखें तो वह हमारी रक्षा करेगा। यीशु को ताकते रहने में ही हमारी सुरक्षा संभव है। किसी के पास इतनी सामर्थ नहीं है कि वह हमको उसके हाथों में से छीन सके। उसको निरंतर देखते रहने से प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। दूसरा कुरंथियों 3:18। इसी तरह से प्रारंभिक शिष्यों ने अपने प्रिय उद्धारकर्ता की समानता हासिल की। जब उन चेलों ने प्रभु यीशु के वचन सुने तो उन्हें उसकी आवश्यकता महसूस हुई। परिणाम स्वरूप उन्होंने खोज की और पाया तथा उसके पीछे हो लिए। वे घर में, खाने की मेज पर, प्रार्थना की कोठरी में, मैदान और खेत में, सभी स्थानों पर उसके साथ साथ रहे। वे लोग इस तरह से उसके साथ रहते थे जिस तरह से शिष्य अपने गुरु के साथ रहते हुए उसके मुंह से पवित्र सत्य के पाठ सीखता है। वे उसका आदर ठीक उसी तरह से करते थे जैसे दास लोग अपने स्वामी का आदर करते और अपने कर्तव्यों के विषय में सतर्क रहते हैं। वे शिष्य भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य थे। याकूब 5:17। हम लोगों की तरह उन्हें भी पाप से संघर्ष करना पड़ा। उन्हें भी पवित्र जीवन बिताने के लिए अनुग्रह की आवश्यकता होती थी। यहाँ तक कि सबसे प्रिय शिष्य यहूना भी, जिसने सबसे अधिक उद्धारकर्ता की समानता को प्रकट किया, स्वाभाविक तौर पर उसे भी वह स्वभाव मन चरित्र बिना समर्पण नसीब नहीं हुआ। वह स्वाभिमान चरित्र उसे बिना समर्पण नसीब नहीं हुआ। मसीह का आत्मा और उसका प्यार मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है, आत्मा को विनम्र बनाता है और विचारों तथा अभिलाषाओं को स्वर्ग और परमेश्वर की ओर उठाता है। परमेश्वर स्वर्ग जाने समय अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा देने का वादा किया था और जब वह गया वह उन्हें पवित्र आत्मा भेजा कि वह हमारे अंदर हमारे मन में हमेशा रहे। अपने प्रथम शिष्यों के साथ मसीह का जैसा संबंध था उसी प्रकार का संबंध वह आज के अपने सभी बेटे बेटियों के साथ रखना चाहता है। यदि मसीह हमारे दिलों में अपने पवित्र आत्मा के साथ रहेगा तो वह अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डालता है। यह हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों 2:13 में। जब हम वैसे ही कार्य करेंगे जैसे उसने किए थे तो हम उसी स्वभाव को प्रकट करेंगे जो उसने प्रकट किया था। इस प्रकार उससे प्रेम करते हुए और उसमें बने रहते हुए हम सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएंगे। इफिसियों 5:15। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। हम सबको स्वीकार कर पिता, हमें तेरा आत्मा से भर दे और तेरा प्रेम से भर दे। हमें तेरा सच्चा मार्ग में चलने के लिए मदद कर पिता। हम कमजोर हैं पर तू हमें बल दे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप पर जयवंत बना और हमें प्रेम और शांति का जीवन बिताने में मदद कर। हमें तेरे राज के लिए तैयार कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।